दिन भर 3 जनवरी दिन मंगलवार, मैं हूं रेहान फदल। समाजवादी पार्टी में अभी भी समझौते की कोशिशें जारी, मुलायम और अखिलेश की एक और मुलाकात।
ढेर सारी बातें हैं लेकिन अमर सिंह को लेकर के कुछ भी नहीं बन पा रहा है। मुलायम सिंह यादव अमर सिंह को छोड़ने को तैयार नहीं है और अखिलेश यादव किसी भी कीमत पर उनको पार्टी में रखने के लिए तैयार नहीं है।
देखेंगे किस तरह केरल में लोगों का कराया जा रहा है धर्म परिवर्तन। लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार वात्सल्य राय से। उत्तर प्रदेश की सत्ताधारी समाजवादी पार्टी में सुलह की कोशिशें जारी हैं। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज अपने पिता मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की। इस दौरान आजम खान समेत कुछ अन्य प्रमुख नेता मौजूद थे। दूसरी तरफ मीडिया में आई रिपोर्टों के मुताबिक रामगोपाल यादव ने कहा है कि पार्टी में कोई समझौता नहीं हो रहा है। उन्होंने सुबह चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की थी। रामगोपाल ने ही रविवार के सम्मेलन में अखिलेश यादव के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की घोषणा की थी। तुर्की पुलिस नए साल की पूर्व संध्या पर इस्तांबुल के नाइट क्लब पर हमला करने वाले व्यक्ति की तलाश कर रही है। मीडिया में आई रिपोर्टों के मुताबिक हमले का संदिग्ध नवंबर में किर्गिस्तान से आया 28 साल का व्यक्ति हो सकता है। रिपोर्टों के मुताबिक पुलिस ने उससे पूछताछ की थी लेकिन बाद में उसे बिना किसी कार्रवाई के छोड़ दिया गया था। हालांकि मीडिया के दावों की आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है। हमले में 39 लोगों की मौत हो गई थी। पुलिस ने इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया है। नए साल के मौके पर तुर्की के जिस क्लब पर हमला हुआ था उसके मालिकों में से एक अनी उनाल ने बताया कि जिस वक्त हमलावर दाखिल हुआ उस वक्त वो क्लब के गेट पर थे और फ़ोन पर बात कर रहे थे। उन्होंने बताया सब कुछ रोज की तरह ही चल रहा था। क्लब में मौजूद मेहमान माहौल का मजा ले रहे थे। सामान्य तौर पर नए साल की पूर्व संध्या पर ज़्यादा हलचल नहीं होती है। क्लब के गेट पर एक पुलिस अधिकारी थे, हमारा सुरक्षा गार्ड भी मौजूद था। हमने ज़ोरदार धमाके की आवाज़ सुनी, ये एंटी एयरक्राफ्ट गन के जैसी आवाज़ थी। मुझे लगा कि ये पटाखे की आवाज़ है। मैंने कुछ नहीं किया, मैं बाहर ही खड़ा था। कुछ देर बाद मैं समझ पाया कि कोई गोली चला रहा है। ये थे इस्तांबुल के रैना क्लब के एक मालिक के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। जर्मनी के गृहमंत्री थॉमस दे मेजे येरे ने बर्लिन के क्रिसमस बाजार पर हुए हमले के बाद सुरक्षा व्यवस्था में सुधार का प्रस्ताव पेश किया है। उन्होंने एक अखबार में लिखा कि जर्मनी की सरकार का घरेलू खुफिया सेवा पर ज़्यादा नियंत्रण होना चाहिए। अभी इसकी सूचनाएँ 16 राज्य सरकारों के साथ साझा की जाती हैं। उन्होंने फेडरल पुलिस की भूमिका बढ़ाने की बात भी की। गृहमंत्री ने कहा कि जिन शरणार्थियों की अर्जियां खारिज हो जाती हैं उनके लिए डिपार्चर सेंटर भी बनाया जाना चाहिए। बर्लिन हमले के बाद सरकार को आलोचना का सामना करना पड़ा था। दक्षिण कोरिया ने कहा है कि अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम की वजह से मौजूद खतरे की जानकारी है और उन्होंने उत्तर कोरिया को चेतावनी भी दी है। उत्तर कोरिया का दावा था कि उसके पास अमरीका पर परमाणु हमले की क्षमता है। ट्रंप ने इसे खारिज करते हुए कहा था कि ऐसा संभव नहीं है। दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि ट्रंप और उनकी टीम उत्तर कोरिया पर प्रतिबंधों का समर्थन करती है। वहीं चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गेंग शुआंग ने कहा शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए हम कोरियाई प्रायद्वीप से परमाणु हथियारों की समाप्ति का समर्थन करते हैं। हम मुद्दे के बातचीत के जरिए समाधान के पक्ष में हैं। चीन इस दिशा में प्रयास कर रहा है। हम उम्मीद करते हैं सभी पक्ष न तो कुछ ऐसा कहेंगे और न ही ऐसा कुछ करेंगे जिससे तनाव बढ़े। हम उम्मीद करते हैं कि इस मुद्दे पर जल्दी ही बातचीत शुरू होगी। ये थे चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। सऊदी अरब से मिली रिपोर्टों के मुताबिक बीते साल वेतन नहीं मिलने के विरोध में प्रदर्शन करने वाले कई विदेशी श्रमिकों को जेल भेजा गया था। सऊदी अरब के अखबारों के मुताबिक मक्का की एक कोर्ट ने करीब 50 श्रमिकों को 45 दिन से 4 महीने तक की सजा सुनाई। कुछ अन्य को 300 कोड़े मारने की सजा सुनाई गई। ये मामले निर्माण से जुड़ी कंपनी सऊदी बिन लादेन से जुड़े हैं। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फजल का। समाजवादी पार्टी में चल रहा पारिवारिक संकट हर रोज एक नया करवट ले रहा है। आज दिल्ली में जहां अखिलेश ग्रुप की ओर से रामगोपाल यादव अपना पक्ष रखने के लिए चुनाव आयोग पहुंचे, वहीं दिल्ली में मुलायम सिंह के घर पर अखिलेश और मुलायम की 3 घंटे से भी ज्यादा देर तक बैठक चली, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकल सका है। जानकारों का कहना है कि नतीजा निकलने की उम्मीद अब ना के बराबर है। सुनिए लखनऊ से समीर आत्मन मिश्र की रिपोर्ट।
सोमवार को मुलायम सिंह यादव ने पार्टी के ज्यादातर नेताओं को दिल्ली बुलाया था, जिनमें शिवपाल यादव और अमर सिंह तो थे ही, आजम खान और कुछ अन्य लोग भी शामिल थे। लेकिन मंगलवार को वो खुद अचानक लखनऊ वापस आ गए। उनके आने के बाद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव उनके आवास पर पहुंचे और दोनों के बीच वार्ता शुरू हुई। इस वार्ता की जानकारी किसी को भी नहीं थी, लेकिन 3 घंटे से ज्यादा देर तक पिता पुत्र की बातचीत चली। बाद में बैठक में शिवपाल यादव भी शामिल हुए, लेकिन ये पूरी बैठक बेनतीजा ही निकली। पार्टी में लगभग 2 फाड़ होने के बावजूद क्या अब भी सुलह की कोई गुंजाइश बची हुई है? इस सवाल पर पार्टी प्रवक्ता जूही सिंह कहती हैं,
माननीय मुख्यमंत्री ने शुरू से कहा है कि वो कोशिशें करते रहेंगे और निरंतर पिछले 4 महीने से वो कोशिश कर रहे हैं अपनी बात और मैसेज पहुंचाने की कि पार्टी एमपी एमएलए कार्यकर्ता डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट उनके साथ ही नहीं उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहते हैं। इशू यही आ रहा है, माननीय नेता जी हम सबके नेता हैं लेकिन साथ ही चुनाव बहुत पास आ गए हैं तो पार्टी इसके लिए भी तैयार है कि हमको माननीय नेताजी के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री के नेतृत्व में अगर चुनाव में जाना पड़े तो हम जाएं।
बताया जा रहा है कि पार्टी के 2 फाड़ होने और मुलायम अखिलेश के आमने सामने आ जाने के बाद राजनीतिक नफा नुकसान भी देखा जा रहा है। शुरुआत में तो ऐसा लगा कि अखिलेश के नेतृत्व में पार्टी चुनाव में उतरेगी तो उसे लाभ होगा, लेकिन अब ये बातें भी सामने आ रही हैं कि मुलायम के जीते जी समाजवादी पार्टी का बिना उनके कोई मतलब नहीं। जानकारों का ये भी कहना है कि पार्टी में कार्यकर्ताओं और समर्थकों का अभी भी बड़ा वर्ग ऐसा है जो कि मुलायम सिंह को ही नेता मानता है, अखिलेश को नहीं। वहीं आज दिल्ली में अखिलेश खेमे की ओर से रामगोपाल यादव ने भी चुनाव आयोग में दस्तक दी। पार्टी के नाम और चुनाव निशान साइकिल पर दोनों ही खेमा अपना अधिकार जताने के लिए अब आयोग पहुंच चुका है। जानकारों का कहना है कि आज की बैठक के बाद दोनों खेमों में सुलह की उम्मीद अब लगभग खत्म हो चुकी है। वरिष्ठ पत्रकार राधेकृष्ण कहते हैं,
3 घंटे तक मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के बीच बैठक हुई, बिल्कुल दोनों लोग बंद कमरे में अकेले थे, ढेर सारी बातें हुई, लेकिन अमर सिंह को लेकर के कुछ भी नहीं बन पा रहा है। मुलायम सिंह यादव अमर सिंह को छोड़ने को तैयार नहीं है और अखिलेश यादव किसी भी कीमत पर उनको पार्टी में रखने के लिए तैयार नहीं है।
बताया जा रहा है कि अब 1-2 दिन में ही चुनाव आयोग चुनावी तिथियों की घोषणा भी करने जा रहा है। ऐसे में पार्टी का निशान किसे दिया जाए, इसका फैसला इतनी जल्दी संभव नहीं है। जानकार बताते हैं कि ऐसी स्थिति में आयोग चुनाव निशान को अपने पास रख सकता है और दोनों ही दावेदारों को अलग अलग चिन्हों पर चुनाव लड़ना पड़ सकता है। समीर आत्मज मिश्र, BBC लखनऊ।
मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया के पूर्व संपादक अंबिकानंद सहाय से संपर्क किया और पूछा कि मुलायम सिंह जिस तरह बार बार अपना स्टैंड बदल रहे हैं, कभी वो कुछ लोगों को पार्टी से निकालते हैं फिर उन्हें वापस ले लेते हैं, इससे उनकी जगहसाई या किरकिरी नहीं हो रही है आम लोगों में?
देखिए, आप एक तरफ से देखें तो किरकिरी हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ देखिए कि इसके अलावा कोई उपाय नहीं था। अब एक लास्ट फिर कोशिश की जा रही है जिसमें आजम खान साहब बीच में हैं और उनका कहना है कि अगर ये नहीं होगा तो मुस्लिम वोट बैंक बंटने का बिल्कुल खतरा है, तो ये सोच करके ये लोग कर रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात चुनाव के एन पहले ये है कि अखिलेश यादव तो भाई साहब इमर्ज कर गए, अब सुलह हो ना हो, सुलह होगी तो भी फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस मुलायम सिंह के अध्यक्ष पद पे बने रहते हुए अखिलेश ही नेता होंगे, इस बात का तो फैसला हो गया। अब सवाल यहाँ पे 2 उठता है कि देखिए कल मोस्ट प्रोबेबली चुनाव डिक्लेयर हो जाएगा, अगर ये फाइनल सुलह नहीं होता है तो उस शक्लो सूरत में क्या ये तुरंत अपना कोई सिंबल ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे? अगर नहीं ले पाएंगे, क्योंकि अब के वक्त में अगर 10 दिन में नुकसान होता है तो बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि आज इनके पास कैंपेन करने के लिए भी एक बड़ा चेहरा अखिलेश के अलावा और कोई नहीं है। मुलायम सिंह बहुत बड़े हैं, लेकिन अगर ये फाइनल सुलह नहीं होता है तो अकेले रह जाएंगे अखिलेश यादव। हाँ, कांग्रेस से अगर समझौता होता है तो और बड़े कैंपेनर्स आ सकते हैं।
अंबिकानंद जी, आप बात कर रहे हैं फाइनल सुलह की, लेकिन आपको लगता नहीं कि इतना ट्रस्ट डेफिसिट है कि अगर सुलह हो भी जाती है, आपको लगता है ये पूरे मन से काम करेंगे, कहीं ना कहीं तो खटास बनी ही रहेगी?
खटास बनी रहेगी, लेकिन देखिए वोटर ज्यादा डिसाइसिव होता है नेताओं से। उसको जिसको वोट देना है रेहान भाई, उसी को वोट देगा वो। अब ये जरूर है कि देखिए, हम ये भी मानते हैं कि मुस्लिम सॉलिडारिटी इज एज बिग ए मिथ इन इंडिया एज हिंदू सॉलिडारिटी इज। वो कॉन्स्टिट्यूएंसी टू कॉन्स्टिट्यूएंसी वैरी करता है। जहां लगेगा कि यहां सिर्फ बसपा भाजपा को हरा सकती है, वहां बसपा के साथ जाएंगे। अब सुलह का एक फायदा ये हो सकता है, और अगर कांग्रेस से समझौता हो तो, कि कम से कम तीन भाग में नहीं बटेगा वो वोट।
भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के पर्सपेक्टिव से देखिए, उनको उनको कितना फायदा हो रहा है इस पूरी लड़ाई से?
जहां तक बहुजन समाज पार्टी का सवाल है, उसको तो स्पष्ट फायदा होता दिखाई दे रहा है कि इस झगड़े के कारण 20% 25% 30% और अगर वोट बटते हैं तो वो बहुजन समाज पार्टी के खाते में जाएंगे, जहां तक मुस्लिम वोट का सवाल है। अब आइए नॉन मुस्लिम वोट्स, जो मेजॉरिटी वोट है, वो उसकी हालत ये है कि भारतीय जनता पार्टी की ताकत ही 15-20% से ज्यादा नहीं है उत्तर प्रदेश में, जहां तक असेंबली चुनाव का प्रश्न है। और यदि आप ये सोचते हैं कि 2014 की तरह 42% वोट ले आएगी भारतीय जनता पार्टी, तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, वैसा नहीं होगा। और एक भी नेतृत्व नहीं है, कोई चेहरा मुख्यमंत्री का नहीं है, और ये असेंबली का चुनाव है, ये लोकसभा का चुनाव नहीं है। उनके सामने एक बहुत बड़ा खतरा इधर नोटबंदी से आ गया है। ये ब्राह्मण और बनिया की पार्टी मानी जाती थी, सबसे दुखी वर्ग आज बनिया वर्ग है, उसके टूटने का पूरा पूरा खतरा है। नरेंद्र मोदी जी के डायनेमिक पर्सनालिटी के कारण, चरिज्मा के कारण, और कितना वोट जोड़ पाते हैं ये तो देखने की बात है। वैसे मेरा अपना मान्यता है कि ये चुनाव भी एसेंशियली सपा और बसपा के बीच में ही नंबर एक और दो के लिए होगा।
ये थे टाइम्स ऑफ इंडिया के संपादक, पूर्व संपादक अंबिकानंद सहाय।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
बंगलोर की पुलिस 15 कैमरों की मदद से उन लोगों को खोजने की कोशिश कर रही है जिन पर नववर्ष समारोह के दौरान कुछ महिलाओं से छेड़छाड़ करने का आरोप है। इस मुद्दे पर कर्नाटक के गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर की इस टिप्पणी के बाद कि इस तरह की चीजें हो जाया करती हैं, सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है। बेंगलोर से इमरान कुरैशी की रिपोर्ट।
हर साल बेंगलुरु के महात्मा गांधी रोड और ब्रिगेड रोड पे बहुत सारे युवक इकट्ठा होते हैं नए साल के प्रवेश के लिए। इस साल भी लोग जमे थे, लेकिन पिछले सालों से 3 गुना ज्यादा तादाद में। बेंगलोर मिरर के फोटोग्राफर अनंत सुब्रमण्यम भी वहां मौजूद थे, और उनके तस्वीरों प्रकाशित होने के बाद सोशल मीडिया में बहुत चर्चा होने को आई है। वजह ये थी कि कर्नाटक के गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वरा ने एक बयान में कहा, हाँ ऐसे तो वाक्या होते हैं, इस तरह के वाक्या तो होते हैं, लेकिन दिसंबर 31 की रात को क्या हुआ? अनंत सुब्रमण्यम कहते हैं,
हर साल के जैसे इस साल भी मैंने गया था रेवेन्यू शूट करने। सर क्या हुआ, आप चर्च स्ट्रीट ब्लास्ट होने के बाद थोड़ा कम था लास्ट 2 ईयर से क्राउड, बट इस बार 3 गुना ज्यादा क्राउड थे। एमजी रोड और कामराज रोड पे भी क्राउड इतना फैले हुए थे कि लोग फंसे हुए थे लिटरली। 12:30 को थोड़ा बहुत क्लियर हुआ, तभी हम मुझे दिखाई दिया कि बहुत सारे लेडीज यंग वुमेन, थोड़े बहुत लोग तो फेंट होने जैसे हो गए थे। वो लोग पुलिस के पास दौड़ के आए हेल्प करने के लिए कि वो आदमी मुझे ऐसे किया, वो ग्रुप में ऐसे किया।
सुब्रमण्यम के अलावा वहाँ एक और महिला थी जिसने लोगों का बर्ताव देखा। इशिता अपने खानदान और दोस्तों के साथ एक रेस्टोरेंट में गई थी, और जब वे बाहर निकले तो देखे कि बहुत सारी पुलिस तैनात की गई थी। क्योंकि वो इस इलाका जानती थी तो उनके भाई और रिश्तेदार महिलाओं को बीच में रखकर सुरक्षित किया। इशिता ने कहा, जब हम रोड पर आए तो 20-30 लोगों का एक जुट हमारे तरफ भागते हुए आया, तो जाहिर है कि थोड़े महिलाओं को उस जुट में शामिल पुरुष छुआ। ये भी सच है कि कि वो जुट इसलिए भागा था क्योंकि पुलिस वहां से लोगों को निकालना चाह रही थी। हम उनकी तरफदारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये भी कहना मुनासिब है कि पुलिस बहुत ही बड़ी तादाद में मौजूद थी और हमने ये भी देखा कि महिलाओं को वो पूछ रहे थे कि उनको कहाँ जाना है। ये थे इशिता के शब्द। लेकिन पुलिस इस मामले में एक मुश्किल में पड़ गई है। 72 घंटों बाद भी उनको कोई महिला ने शिकायत दर्ज नहीं की है। बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर प्रवीण सूद कहते हैं,
देखिए हमने तीन बातें मैंने सब लोगों को कही हैं। पहली तो बात ये है कि अगर कोई भी लेडी हमारे पास आती है कि मुझे मोलेस्ट किया गया है या इनअप्रोप्रिएटली कुछ उसके खिलाफ हुआ है, तो हम एक मिनट भी वेस्ट नहीं करेंगे एक्शन लेने से पहले। हम काफी सारी फुटेज देख चुके हैं, हमें कहीं भी मोलेस्टेशन का कुछ भी दिखता है, कोई एविडेंस मिलता है, तो हम बिना किसी से कंप्लेनेंट के वेट किए हुए भी हम उस पे क्रिमिनल एक्शन बिल्कुल शुरू कर देंगे।
पुलिस बल इस इलाके में करीब 1500 की थी, फिर भी महिलाओं को सुरक्षा देना मुश्किल था। जाहिर है कि जो लोग महिलाओं के साथ बदसलूकी करते हैं उनकी तादाद इस इलाके में बढ़ गई है। बेंगलुरु से इमरान कुरैशी,
ये बीबीसी है। आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फदल के साथ। तृणमूल कांग्रेस सांसद सुदीप बंदोपाध्याय को आज रोजवेली चिटफंड घोटाला मामले में पूछताछ के बाद सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। इसी मामले में टीएमसी के एक अन्य सांसद तपस पाल से पिछले हफ्ते पूछताछ हुई थी। टीएमसी ने सीबीआई की कार्रवाई में अचानक आई तेजी के लिए केंद्र की मोदी सरकार पर आरोप लगाया है और कहा है कि ये बदले की कार्रवाई है। मैंने कोलकाता फोन कर बीबीसी संवाददाता अमिताभ भट्टशाली से संपर्क किया और पूछा कि सुदीप बंदोपाध्याय को क्यों गिरफ्तार किया गया।
देखिए रोज वैली नाम के एक कंपनी जो गैर कानूनी तरीके से आम लोगों से डिपॉजिट कलेक्ट कर रहे थे कई सालों से, जिसको कहा जाता है चिट फंड, तो ऐसे ही एक कंपनी के साथ उनका संबंध था। इसी सिलसिले में सुदीप बंदोपाध्याय को गिरफ्तार किए हैं सीबीआई ने। आज उनको आज बुलाया गया था पहले पूछताछ के लिए, करीब 4.5 घंटे तक उनका पूछताछ जारी रहा और उसके बाद गिरफ्तार कर लिया गया। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक जो डॉक्यूमेंट्स उनको दिखाया गया रोज वैली चिटफंड और सुदीप बंदोपाध्याय के बीच के, उसमें कई ट्रांजेक्शन के डॉक्यूमेंट्स थे और कई दूसरे डॉक्यूमेंट्स भी थे, और सुदीप बंदोपाध्याय ने उसका सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि वो किस लिए उस कंपनी और उनके बीच ये आर्थिक लेन देन जो हुई थी वो किस लिए किया गया था, तो वो अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाए और ज्यादातर क्वेश्चंस का जवाब भी नहीं दे पाए, तो इसलिए उनको गिरफ्तार कर लिया गया और रात को ही उनको भुवनेश्वर ले जाया जाएगा, क्योंकि इसकी जांच भुवनेश्वर में चल रही है और वहीं पर 30 तारीख को तृणमूल कांग्रेस के दूसरे एमपी और जो बंगाली फिल्म के हीरो भी रहे हैं तापस पाल, उनका भी गिरफ्तारी वहीं पर हुआ है। वो तापस पाल और सुदीप बंदोपाध्याय दोनों को आमने सामने बैठा कर इंटरोगेट करना चाहते हैं सीबीआई के अफसर।
ये बताइए तृणमूल कांग्रेस की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई है, ममता बनर्जी कुछ बोली?
जी ममता बनर्जी, तो ये पहली रिएक्शन उन्हीं का आया है और वो बोल रही थी कि वो सोच भी नहीं सकती है कि सुदीप बंदोपाध्याय को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि वो लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की लीडर है और काफी महत्वपूर्ण लीडर है पूरी पार्टी के, तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा ये कभी वो सोची भी नहीं थी। और ममता बनर्जी का कहना है कि चूंकि नोटबंदी के खिलाफ आम लोगों के पक्ष में जाकर के वो नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ वो बोल रही है, आवाज उठा रहे हैं, तो इसीलिए ये गिरफ्तारी हुई है। और ममता बनर्जी एक नाम जरूर लिए हैं अदानी के। ममता बनर्जी बोल रही थी कि अदानी को क्यों नहीं अरेस्ट किया जा रहा है, जो इतने सारे घोटाले का आरोप है जिसके खिलाफ, उनको भी अरेस्ट करना चाहिए और नरेंद्र मोदी और अमित शाह को भी अरेस्ट करना चाहिए, जब तक वो दोनों बाहर है देश के लोगों को मुश्किल होगी।
ये थे बीबीसी संवाददाता अमिताभ भट्टशाली।
बीबीसी हिंदी रेडियो पर बुधवार को दुनिया जहां
अंतर्राष्ट्रीय खबरों के पीछे का सच,
शुक्रवार को इतिहास की परतें खोलती विवेचना
और शनिवार को आपकी आवाज इंडिया बोल।
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में हर साल करीब 1.25 लाख औरतों की मौत बच्चा पैदा करते वक्त या उसके बाद के 1.5 महीने में उसी से जुड़ी किसी कॉम्प्लिकेशन से हो जाती है। इन्हीं की सेहत को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने 31 दिसंबर को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में गर्भवती औरतों को 6,000 रुपए की मदद दिए जाने का ऐलान किया। पर मदद की ये योजना नई नहीं है और 2010 में मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली तत्कालीन यूपीए सरकार में इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना के नाम से इसको शुरू किया गया था। सिर्फ 53 जिलों में शुरू की गई इस योजना को पूरे देश में लागू करने के लिए 2013 में इसे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का हिस्सा बना दिया गया, पर सरकार बदलने के बाद भी आज तक ये कागज पर ही है। विशेष रिपोर्ट के साथ दिव्या आर्य।
इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना साल 2010 में लागू हुई। इसके 3 साल बाद सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज नाम की शोध संस्था ने इसका विश्लेषण किया। इसमें पाया गया कि करीब 40% औरतों को इस योजना की जानकारी पहुंची ही नहीं और जिन तक पहुंची उनमें से कई के पास अधूरी या गलत जानकारी थी। वैसे इस योजना की जानकारी हो भी तो ये सब औरतों पर लागू नहीं है। इसका फायदा लेने के लिए कुछ शर्तें रखी गईं कि गर्भवती माँ की उम्र 19 साल से ज्यादा होनी चाहिए और योजना पहले 2 बच्चों पर ही लागू होगी।
The poorest families do have more than 2 children because they have the worst child survival. They don't have health facilities, their babies die.
औरतों के स्वास्थ्य पर काम कर रही संस्था सहयोग में वरिष्ठ सलाहकार जशोधरा दास गुप्ता के मुताबिक ग्रामीण और पिछले इलाकों में पैदा होने के कुछ ही दिनों में बच्चे की मौत के इतने मामले होते हैं कि 2 बच्चे की शर्त रखना व्यावहारिक नहीं।
And there are many other conditions also कि आपको हॉस्पिटल में चाइल्ड बर्थ कराना है, आपको बच्चे का इतना सारा वैक्सीनेशन प्रूव करना है, ये वो, अदरवाइज वी वोंट गिव इट टू यू।
खुद नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 3 के मुताबिक भारत में 58% महिलाओं की शादी 18 साल की उम्र से पहले हो जाती है। ऐसे में ये शर्तें मानना औरत के हाथ में तो नहीं है, पर पूरी ना होने की वजह से वो योजना से वंचित जरूर रह जाएंगी। ऐसी शर्तें लगाने के पीछे सरकार का मकसद है लोगों का व्यवहार बदलना, मसलन कम बच्चे पैदा करना और 18 साल के बाद ही शादी करना, और योजना का लाभ औरत को ही मिले इसके लिए पैसे सीधा उसके अपने खाते में डाले जाए। पर ये उतना आसान भी नहीं है। गुजरात के आदिवासी इलाके पंचमहल में औरतों के स्वास्थ्य पर काम कर रही संस्था आनंदी की प्रदीपा दुबे के मुताबिक वहाँ आमतौर पर औरतें बैंक खाते खुलवाती ही नहीं हैं।
उसका बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए उसे दौड़ धाम उसे खुद करना पड़ता है क्योंकि उसके परिवार में कोई सपोर्ट के लिए नहीं है। आशा वर्कर जल्दी साथ में जाती नहीं है, बैंक में जाए लाइन में खड़ी रहे तब तक शाम हो जाए, पैसा नहीं मिले। जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती है उन्हें ये अपना पैसा लेने में बहुत ही उन्हें संघर्ष करना पड़ता है, बैंक तक जाने पर भी उसे पैसा नहीं मिलता है।
अंजू त्यागी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में गर्भवती महिलाओं के साथ पिछले 7 सालों से बतौर आशा वर्कर काम कर रही हैं। उनके मुताबिक इन औरतों के बेहतर पोषण के लिए बनी ये सभी योजनाएं तभी कारगर हो सकती हैं जब इन्हें लागू करने में अहम भूमिका निभाने वाली आशा वर्कर, ANM यानी बच्चे की डिलीवरी करवाने वाली स्वास्थ्यकर्मी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और अस्पतालों की संख्या बढ़े।
कि गांव सुजड़ू है यहाँ पे, उसमें 70,000 की आबादी है और एक ANM को 5,000 की आबादी पे रखा जाता है और वहाँ पे उस 70,000 की आबादी पे 2 ANM है, 2 ही उपकेंद्र है। 2 ही उपकेंद्रों पे कोई डिलीवरी नहीं होती है, कुछ नहीं होता है, सिर्फ टीकाकरण होता है।
जशोधरा दास गुप्ता के मुताबिक प्रधानमंत्री के ऐलान से उम्मीद जगती है कि अब ये आखिरकार पूरे देश में लागू हो जाएगा, पर साथ ही कहती हैं कि उन्होंने अपने भाषण में इस योजना में 2 और शर्तें डाल दी, इससे फिर से बहुत सी औरतों के वंचित रह जाने का डर पैदा हो गया है। दिव्या आर, BBC दिल्ली।
1.5 महीने पहले केरल के मलापुरम जिले में फैसल नाम के एक युवक की हत्या कर दी गई थी। वो अगले दिन नौकरी पर वापस सऊदी अरब लौटने वाला था। उसकी हत्या के इल्जाम में 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है जिनमें से एक करीबी रिश्तेदार है। फैसल ने अपनी मौत से कुछ महीने पहले इस्लाम धर्म अपनाया था। केरल में धर्म परिवर्तन एक बड़ा मुद्दा है। RSS जैसी हिंदू संगठनों का दावा है कि धर्म परिवर्तन के लिए हिंदुओं को मजबूर किया जा रहा है, लेकिन क्या ये सही है? हमारे साथी जुबैर अहमद केरल के कालीकट में एक धर्म परिवर्तन संस्था में गए और वहां से उन्होंने ये विशेष रिपोर्ट भेजी है।
एक मौलवी एक क्लासरूम में कुरान का पाठ पढ़ा रहा है। क्लासरूम में 10 लोग हैं जिन्होंने हाल में इस्लाम कबूल किया है।
میں تربیت الاسلام سبھا کالیکٹ میں ہوں اور یہاں پر جو تربیت دی جاتی ہے ایسے لوگوں کو جو مسلمان ہوتے ہیں، کئی طرح کے کلاسز ہوتے ہیں جہاں پر ان کو اچھے مسلم کی تربیت دی جاتی ہے، کیسے اچھا مسلم بنا جائے، سماج میں کیسے انٹیگریٹ ہوا جائے، یا پھر اگر اسلام کے بارے میں اور سمجھنا چاہتے ہیں تو یہی وہ جگہ ہے جہاں پر اس طرح کی تعلیم دی جاتی ہے، اس طرح کا انہیں درس دیا جاتا ہے۔
ان میں سے کچھ کو پڑھنے میں دقتیں آ رہی ہیں، لیکن رفیق ٹھیک طرح سے اپنا پاٹھ پڑھ پا رہے ہیں۔ بعد میں انہوں نے مجھے پڑھ کر بھی سنایا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمت دیالمایوں کرونامایا اللہ وین نامتنی الرحمن الرحیم پرنا۔
رفیق 4 سال پہلے مسلمان بنے، ان کا پرانا نام مہیش تھا اور وہ کرناٹک کے رہنے والے ہیں۔
کارنم نگکی ایک دیو وشواسانو ان سشٹچاون ان دیوتنے ماتر۔
رفیق کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے قرآن اور اسلام کی کئی دوسری کتابیں پڑھ کر اسلام قبول کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں یقین ہو گیا کہ اللہ ایک ہے جس نے ہم سب کو بنایا، میں نے سچ کا رستہ اپنایا۔ یہ تھے رفیق کے شبد۔ رفیق کے انوسار انہیں کسی نے دھرم پریورتن کے لیے مجبور نہیں کیا اور نہ ہی ان پر کسی طرح کا دباؤ تھا۔ رفیق کہتے ہیں کہ اب وہ اپنے ماتا پتا کو اسلام دھرم قبول کرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جلد ہی ان کے ماتا پتا بھی اسلام قبول کر لیں گے۔ کیرل میں اسلام دھرم میں پریورتن کے لیے 2 رجسٹرڈ سنستھائیں ہیں، ان میں سے 100 سال پرانی ہے، جبکہ تربیت الاسلام سبھا لگ بھگ 80 سال پہلے استھاپت ہوئی تھی۔ سڑک کے کنارے دکانوں کے بیچ تھوڑا اندر کی طرف ایک بڑا سا گیٹ ہے جس کے اندر جا کر ملاقاتی کو اپنا نام رجسٹر میں لکھانا پڑتا ہے۔ ایک بار اندر گئے تو سنستھا کے ذریعے جاری کیے گئے استھائی پہچان پتر کو گلے سے لٹکانا انیواریہ ہے۔ یہاں ایک دن میں اوسطاً 1 شخص اسلام قبول کرتا ہے۔ اس سمے یہاں 30 لوگ اچھے مسلمان بننے کی ٹریننگ حاصل کر رہے ہیں۔ بہومت مہیلاؤں کی ہے جن سے ہمیں ملنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ سنستھا کے پربندھک علی کویا آدھی سفید ہوئی لمبی داڑھی کے باوجود ٹھیٹھ مولوی نہیں لگتے۔ وہ جب مسکراتے ہیں تو ان کے سامنے کے ٹوٹے ہوئے دانتوں سے ان کی ڈھلتی عمر کا اندازہ ہوتا ہے۔ انہیں دیکھ کر نہیں لگتا کہ وہ دھرم پریورتن کے دگج
ہیں۔
وہ کہہ رہے تھے کہ میں پچھلے 40 سالوں سے اس کام میں لگا ہوں اور اب تک ہزاروں لوگوں کو کلمہ پڑھا چکا ہوں۔ دراصل وہ اپنی سنستھا میں کلمہ انہی لوگوں کو پڑھاتے ہیں جو اسلام میں پرویش کرنے کا فیصلہ سنستھا میں آنے سے پہلے ہی کر چکے ہوتے ہیں۔ علی کویا کے انوسار اس سنستھا میں دھرم پریورتن دیش کے قانون کے دائرے میں کیا جاتا ہے اور ہر پریورتن کی رپورٹ پولیس کو بھیجی جاتی ہے۔
അവരുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിൻ്റെ എഗ്രിയോട് കൂടി തന്നെ അവരുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ എഗ്രിയോട് കൂടി തന്നെ അവരോട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ പ്രൂഫ്।
कोया कहते हैं लोग अपनी मर्जी से इस्लाम धर्म कबूल करते हैं, हम पहले पहचान पत्र की जांच करते हैं, ये देखते हैं कि कहीं उनका क्रिमिनल या चरमपंथी बैकग्राउंड तो नहीं। पासपोर्ट, आधार कार्ड और स्कूल सर्टिफिकेट जैसे पहचान पत्र को देखकर और उनके परिवार से संपर्क करके ही उनका धर्म परिवर्तन किया जाता है। इस संस्था में इस्लाम को अपनाने वालों में 60% महिलाएं हैं। लगभग 70% लोग हिंदू धर्म से इस्लाम कबूल करते हैं और धर्म परिवर्तन करने वाले अधिकतर गरीब बैकग्राउंड से आते हैं। धर्म परिवर्तन पर हिंदू संस्थाएं चिंतित हैं, लेकिन अली कोया कहते हैं कि मुसलमान भी आर्य समाज और ईसाई मजहब कबूल कर रहे हैं। धर्म परिवर्तन पर चिंता के बावजूद केरल में दूसरे राज्यों के मुकाबले सांप्रदायिक सद्भावना का माहौल अधिक मजबूत है। यहाँ हिंदू आबादी 50% से अधिक है, जबकि मुस्लिम आबादी 26% और इससे कुछ कम संख्या ईसाई धर्म को मानने वालों की है। जुबैर अहमद, BBC कालीकट।
اور اب چلتے چلتے مکھیہ سماچار ایک بار پھر۔
BBC سماچار۔ اتر پردیش کی ستاداری سماجوادی پارٹی میں صلح کی کوششیں جاری ہیں۔ مکھیہ منتری اکھلیش یادو نے آج اپنے پتا ملائم سنگھ یادو سے ملاقات کی۔ دوسری طرف میڈیا میں آئی رپورٹوں کے مطابق رام گوپال یادو نے کہا ہے کہ پارٹی میں کوئی سمجھوتا نہیں ہو رہا ہے۔ ترکی پولیس نئے سال کی پورو سندھیا پر استانبول کے نائٹ کلب پر حملہ کرنے والے ویکتی کی تلاش کر رہی ہے۔ جرمنی کے گرہ منتری نے برلن کے کرسمس بازار پر ہوئے حملے کے بعد سرکشا ویوستھا میں سدھار کا پرستاو پیش کیا ہے۔ BBC سماچار۔
دن بھر میں آج اتنا ہی۔ کارکرم آپ تک پہنچانے میں مدد کی دیپک جسروٹیا نے، ریحان فضل کو سبھی ساتھیوں کے ساتھ اجازت دیجیے۔ نمسکار۔